हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रूहान शहद मिश्री सब कुछ घोलकर रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा था। उसके इस स्वीट टोन को देखकर अनाही का मन किया कि वहीं उसका गला दबा दे, लेकिन फिर उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए कहा, कब तक आपको ऐसे ही मुस्कुराना है सिस्टर? आप अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगी हमारी? ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट चिढ़ गई और उसने जल्दी से एक पर्ची निकालकर अनाही को देते हुए कहा, फिल कर लीजिए और फिर इसमें साइन भी कर दीजिए। अनाही जैसे ही वो फॉर्म फिल करना चाह रही थी, रूहान ने उसके हाथ से पेन और पेपर लेते हुए कहा, मुझे दीजिए मैडम जी, मैं करता हूँ। फिर उसने सिग्नेचर वाली जगह पेरेंट्स सिग्नेचर देखा तो उसने उस रिसेप्शनिस्ट को देखकर कहा, मैं इनका हस्बैंड हूँ, क्या मैं भी यहाँ सिग्नेचर कर सकता हूँ गार्जियन वाली जगह पर? रिसेप्शनिस्ट का मानो पूरा मूड खराब हो गया। उसने बस धीरे से हाँ में सर हिला दिया। वहीं अनाही के होठों पर जैसे एक जंग जीतने वाली स्माइल थी और रिसेप्शनिस्ट को चिढ़ाने वाला लुक देकर स्टाइल से अपने बाल झटकते हुए रूहान की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच रूहान जी, आप कितनी केयर करते हैं मेरी। इस बार झटका लगने की बारी रूहान की थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कुछ देर पहले जो औरत चंडाल का बनी हुई थी इतनी जल्दी इतनी प्यार से कैसे बोलने लग गई। उसने आंखें उठाकर अनाही को देखा जो अब भी बार बार आईज ब्लिंक करते हुए उसे ही देख रही थी और ऑब्वियसली उसकी बड़ी बड़ी पलकें जितनी बार झपक रही थी वो उतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी, जिसे रूहान का दिल सैकड़ों की स्पीड में दौड़ पड़ा था। कुछ देर बाद रूहान और अनाही वापस अपनी गाड़ी में आ चुके थे। उनके हाथों में कुछ मेडिसिन थी जिन्हें देखते हुए अनाही उनकी एक्सपायरिंग डेट और डोज वगैरह पढ़ रही थी। रूहान उसे चोरी छुपे नज़रों से देख रहा था। वो अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि अनाही का मूड आखिर कैसा है, क्योंकि कुछ देर पहले जो स्वीट अनाही थी वो तो उसकी जलन की वजह से थी। ये कुछ ही देर में रूहान को समझ आ गया था, अब शायद फिर से वो झांसी की रानी बन गई होगी। यही सोचकर रूहान का मन नहीं किया कि वो अनाही से कुछ कहे और एक अजीब सी शांति के साथ उनकी गाड़ी वापस नैमानी हाउस की तरफ चल पड़ी। वहीं आज वेदांत भी ऑफिस से लीव ले रहा था, ऑब्वियसली अपनी क्यूट सी वाइफ की केयर करने के लिए। आज विहा बेड पर फैलकर सो रही थी और वेदांत बेचारा सोफे पर सोने की वजह से हल्का अकड़ा हुआ था। वो फ्रेश तो हो चुका था लेकिन नींद पूरी न होने की वजह से उसकी आंखें भरी हो रही थी, इसलिए अब वो थोड़ी देर बेड पर लेटने की सोच रहा था। विहा के पास गया और फिर बिल्कुल थोड़ी सी जगह में सीमित कर लेट गया और कुछ पलों में उसकी आंख लग गई। उसकी आंख लगना ही था कि विहा की भी नींद खुल गई। वो उठकर बैठी और आंखें मसलते हुए सबसे पहले उसकी नज़र अलार्म क्लॉक की तरफ गई जिसमें 7:30 बज रहे थे। फिर उसने नज़रें घुमाकर देखा अपने इतने करीब वेदांत को सोता देखकर, तो वो लगभग उछलते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। वहीं वेदांत ने भी जैसे ही उसकी हल्की सी चीख सुनी वो जल्दी से आंखें खोलकर बेड पर उठकर बैठ गया और घबराते हुए बोला, टमाटो तुम ठीक हो ना, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? विहा ने जल्दी से मुंह फुलाते हुए कहा, आप रात को मेरे पास सोए थे, हम दोनों एक बेड पर एक ही कंबल में, क्या आपने मुझे छुआ? इतना बोलकर विहा यहाँ वहाँ खुद को छू कर देख रही थी और वेदांत ने एक हाथ से अपना माथा पीटते हुए कहा, भगवान माना आपने एंटीक पीस बनाया है लेकिन उसमें थोड़ा सा भेज भी डालना था। फिर उसने विहा को शांत करते हुए कहा, नहीं मैं सोफे पर ही सोया था, अब सुबह उठकर मैं फ्रेश होकर आया था लेकिन मेरा सर दर्द कर रहा था तो मैंने सोचा मैं कुछ पल तुम्हारे पास लेट जाता हूँ, मुझे नहीं पता था मुझे इतनी जल्दी नींद आ जाएगी। विहा ने चैन की सांस ली और फिर लगभग दौड़ते हुए वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के तुरंत बाद वेदांत का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन पर फ्लैश होते नाम को देखा तो ये जूली थी। वेदांत ने एक अंगड़ाई लेते हुए फ़ोन पर कॉल किया तो सामने से जूली उसे कुछ अपडेट देने लगी। वेदांत भी अपना लैपटॉप खोलकर जूली की बताई अपडेट्स को चेक कर रहा था। बीच बीच में वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो कभी उसकी राय ले रहा था। जूली ने उसे बताया कि आज अनाही भी लीव पर है। ये सुनकर वेदांत को लगा शायद अनाही ने भैया के लिए लीव ली है और ये सोचकर उसे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि कल ही तो उसने अनाही से कहा था कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा। क्या अनाही को भी उस पर भरोसा नहीं है? लेकिन फिर उसने इस बात को इग्नोर किया और फिर से जूली से बाकी बातें करने लगा। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब विहा उसके पास आकर उसकी बातें सुन रही है। विहा की आंखें भर आई थी। उसे ये सोचकर बुरा लग रहा था कि उसका पति बहाना बनाता है कि वो उसके लिए अपने ऑफिस का वर्क नहीं करेगा और यहाँ बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से कपड़े लड़ता है। विहा फिर मिरर के सामने बैठकर खुद को संवारने में लग गई। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो खूबसूरत लगे। उसने अपने बालों को भी स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया, माथे पर बिंदी लगाई, होठों पर गहरी लाली और आज सिंपल कपड़ों की बजाय एक हैवी लहंगा और उसके साथ हैवी दुपट्टा पहनना था, जिसका कलर डीप वाइन कलर था, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके हाथ में फिलहाल एक वाइन कलर की लिपस्टिक थी, जिसे लगाते हुए वो खुद को मिरर में देख रही थी। वेदांत, जिसकी नज़र अचानक ही मिरर की तरफ हुई, उसने जूली से कॉल यू बैक बोलते हुए कॉल कट किया और फिर माथे पर बाल डालकर अपनी आंखों को छोटा करते हुए विहा से पूछा, क्या हुआ टोमैटो, तुम कहीं जा रही हो क्या? वैसे मेरी नज़र में तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसके लिए तुम्हें इतना तैयार होना पड़ रहा है, और ऊपर से तुम्हारी पीरियड भी तो है, तो फिर तुम कैसे? विहा, जिनका ध्यान वेदांत की बातों पर था, उसके लिपस्टिक फैल चुकी थी और होठों से बाहर निकल गई थी। उसने जल्दी से मोड़ते हुए कहा, क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लग रही हूँ? वेदांत, देखो मैं कितना सुंदर लहंगा पहनी हूँ, और ये बाल देखो, आज मैंने अपनी मैगी जैसे बालों को बिल्कुल सीधा कर लिया है, क्या मैं फिर भी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हूँ? इतना बोलते बोलते उसका गला भर आया था। उसकी खूबसूरत आंखें लाल हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था वो किसी भी पल बस रोने वाली है। वेदांत ने अपना फोन बेड पर फेंका और फिर उठकर तेज कदमों से उसके करीब आकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, विहा ये सब क्यों बोल रही हो, क्या हुआ है, क्या आंसू, क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्या मैं कुछ गलत कहा है तुम्हें? वेदांत नॉन स्टॉप उसे ये बोल रहा था। विहा ने अपनी डबडबाई आंखों से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए लाई ले रहे हैं, लेकिन आज भी आप अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझूं? क्या आपको मैं कभी पसंद नहीं आऊंगी, चाहे मैं कितनी भी लेडी हो जाऊं? आज भी आप मेरी तारीफ करने की बजाय मुझे ये बोलने की वजह है कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ, आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे कहीं जाना है क्या, कोई फंक्शन है क्या? फिर उसने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, मैं तो खुद को ठीक ही लगती हूँ, हाँ बहुत ज्यादा सुंदर नहीं, लेकिन एवरेज तो हूँ ही। वेदांत की आंखों में हर सेकंड कन्फ्यूजन बढ़ ही रहा था। उसने एक झटके से उसको अपनी बाहों में उठाया और फिर उसे बेड पर ले जाकर बैठा दिया, फिर अपने रुमाल से उसकी फैली हुई लिपस्टिक को पहुँचते हुए बोला, बच्चा जो बात है साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो? हाँ मैं जूली से बातें कर रहा था और वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। विहा ने ये सुना ही था कि उसकी आंखें फैल गई। उसने जल्दी से हड़बड़ा कर कहा, अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो आपसे इतनी बातें क्यों करती हैं? और आप ही ने तो कहा था कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, अब आप कैसे अपनी बात से बदल सकते हैं?
वेदांत ने आहिस्ते से उसके गाल को छूते हुए कहा, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है ऑफिस में, इसलिए वर्क रिलेटेड जो भी काम होता है मैं उसे ही बोलता हूँ, बस इसलिए हमारी बातें सदा होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।